ओम शांति। बहुत अच्छी बात है जो तपस्या की भावनाओं से बाबा के घर पधारे हैं। तपस्या की भावना लेकर इस तपोभूमि पर आए हैं। ये वही डायमंड हॉल है जहां लंबा समय भगवान ने अपनी किरणें फैलाई हैं, ज्ञान रतन प्रदान किए हैं। ये महान तीर्थ है, इसलिए यहाँ का कण कण ईश्वरीय प्रकाश से चार्ज्ड है। हर कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं उस पर भी भगवान की किरणें लंबा लंबा समय पड़ी हुई हैं, और अभी भी कितनी भट्टियां होती हैं। इसी स्थान पर बैठकर अनगिनत बाबा के बच्चों को निराले अनुभव होते हैं। वो यहाँ बैठे देह से न्यारे हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वतन का अनुभव करते हैं। यहाँ बैठे ही सामने इसी मंच पर बाबा की प्रेजेंस फील करते हैं, इसलिए ये भूमि अनुभूतियों की खान है। लेकिन एक लेकिन आता है, उन आत्माओं के लिए जो करना चाहें, जो उतने एकाग्र होकर बैठे, जो अपने आप को यहां आ जाने के बाद चारों ओर से समेट लें, हर कुर्सी पर ऐसे बैठो जैसे आपके आस पास कोई न हो, आप अकेले किसी पहाड़ी की गुफा में एक तपस्वी अलख जगा कर बैठे हो। इस भट्टी में बस मैं अकेला और बाबा मेरे सामने, ऐसी अंदर से अलख जगाओ, लगन की अग्नि जलाओ। कोई अगर थोड़ा बहुत भी ये भाव लेकर आए हो, चलो घूम फिर आएंगे, चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा, चलो आबू जाने के बाद फिर उदयपुर जयपुर यहां वहां घूम के भी आएंगे, ऐसी कोई थोड़ी बहुत भावना कामना लेके भी आए हो, तो अभी उसको काटा लगा देना। बाबा साकार मुरलियों में अक्सर कहा करते हैं, यहाँ कोई पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो, यहाँ तो प्रभु मिलन के लिए आते हो। अभी हम क्लास कराने तो नहीं बैठी हूँ, इससे पहले जो क्लास हुआ है आदरणीय संतोष दीदी जी ने बहुत गंभीर और रोचक विषय हम सबके सामने रखा है। बहुत गंभीर विषय है और वही हम सबका मनोरंजन भी होना चाहिए। ऐसे विषय ब्रह्मा बाप समान, जीवन मुक्त जीवन है, कारोबार है सबके पास, प्रवृत्ति है, जॉब्स होंगी, पढ़ाइयां होंगी, कमाइयां होंगी, परिवार होगा, संपत्ति होगी, सब कुछ ब्रह्मा बाबा के पास भी था। भले सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद भी तो वहीं रहे ना, परिवार भी साथ में था। जो संपत्ति सरेंडर कर दी थी तो वो भी साथ में, देह भी वही पुरानी थी, उस सब के बावजूद भी बाबा जीवन मुक्त हो गए, फरिश्ता हो गए। बाबा का फरिश्ता स्वरूप भी हम सब ने देखा है, जाना है, मिले हैं। अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करते तो दोनों आते हैं, फरिश्ता ब्रह्मा, संग में निराकार ज्योति, दोनों का अवतरण होता रहा इसी मंच पर, आदरणीय गुलजार दादी जी के रथ में। तो जीवन मुक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, फरिश्ता ब्रह्मा, आज भी हमें कुछ कह रहा है, आज भी वो हमें कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? जरा एकाग्र हो जाओ सभी, चुस्त बैठो, जरा भी सुस्त नहीं, अलर्ट भाई हैं सभी, फौजियों जैसा बैठो। और सामने जैसे दीवार नहीं, सूक्ष्म वतन है, चित्र नहीं, चैतन्य फरिश्ता ब्रह्मा है। मन को एकदम चुप कर दो, शांत कर दो और अंतर के कान से सुनो, आत्मिक आवाज से सुनो, फरिश्ता ब्रह्मा, संपन्न मूर्ति, अव्यक्त ब्रह्मा, मुझ ब्रह्मा कुमार से नजरें मिलाता हुआ क्या कह रहा है? अंतर की नजरें मिलाओ बाबा से, सुनो बाबा का आवाज अंदर के कान से, एकदम एकाग्र हो जाओ, पर्सनली सुनो संपूर्ण ब्रह्मा मेरा पिता, मुझे क्या कह रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है? ध्यान से सुनो। मन को पूर्ण शांत करके महसूस करो, बाबा कुछ कह रहा है। हर एक पर्सनल अपने लिए सुनो, बाबा मेरे जीवन को बाप समान बनाने के लिए क्या प्रेरणाएं दे रहे हैं? कैच करो। इस जीवन को बाप समान कैसे बनाना है? बाबा की आशाओं को कैसे पूरा करना है? बाबा से उत्तर लो। सा परिवर्तन, कब और कैसे? बाबा से जो भी टचिंग प्राप्त हुई हो सभी लिखेंगे, नोटबुक पेन निकाल लें। बाबा से जो भी प्रेरणा प्राप्त हुई हो सब लिखें, सफेद लाइट कर दें। अपने जीवन को दुनिया और कार्य व्यवहार में रहते हुए कैसे फरिश्ता ब्रह्मा बाप समान बनाना है सब लिखेंगे, उसके 5 पॉइंट। सभी लिखें, समय थोड़ा है, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ानी होगी। क्या करूं जो जीवन से मुक्त तो हो, फरिश्ता बन जाऊं? बाबा से टचिंग लेते हुए सभी कम से कम 5 पॉइंट्स लिखिए। इस भट्टी में हर एक भाई के पास नोटबुक पेन अवश्य होना चाहिए, कोई ऐसा न हो जिसके पास ना हो। पर चांस आज ना हो तो शाम की क्लास तक ही बुक स्टॉल से डायरी पेन लेकर क्लास में लेकर आए। मेरे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। अब वक्त की पुकार है, जल्दी बनो। जल्दी जल्दी करने के लिए मुझे क्या करना है? न काम छूटे, न परिवार छूटे, फिर भी पुरुषार्थ तीव्र किया जा सके, उसकी जो टचिंग बाबा से प्राप्त हुई हो। 2 मिनट और देते हैं, सभी लिखेंगे। जिनके पास नोटबुक पेन नहीं हो वो सूक्ष्म में बाबा को सुनाएंगे। अब एक प्रश्न लिखेंगे जिसका उत्तर सबको अपने लिए लिखना होगा। अपने जीवन में महान परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन में महान परिवर्तन करने के लिए मेरी कौन सी कमजोरी, मेरी कौन सी कमजोरी विघ्न बनी हुई है। जो मुझे ईश्वरीय जीवन की संपूर्ण मर्यादाएं पालन नहीं करने देती, मेरी कौन सी कमजोरी विघ्न बनी हुई है। ये 3 मिनट के रिकॉर्ड में एकदम लाइट का फरिश्ता बन उड़कर चलेंगे वतन में, बाबा से दृष्टि लेते हुए शक्तियां उतरती महसूस करेंगे। लिखेंगे मेरी कौन सी कमजोरी विघ्न बनी हुई है जो मुझे ईश्वरीय मर्यादाएं पूर्ण रूप से पालन नहीं करने देती। कभी अमृत वेला मिस हो जाता है, कभी मुरली छूट जाती है, कभी अन्न शुद्धि में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो कभी पवित्र दृष्टि वृत्ति में ऊंच नीच हो जाता है तो उसके पीछे कौन सी कमजोरी है चेक करेंगे, लिखेंगे। ठीक आत्मनिरीक्षण करेंगे तो अपने आप को ठीक कर सकेंगे, अपनी गलती खुद निकालें, अपना टीचर खुद बने, तो खुद ही खुद को पढ़ाकर ठीक कर पाएंगे। इसलिए अंतर मन की गहराई में जाओ, कहीं मन ने ये स्वीकार तो नहीं कर लिया कि ऐसा ही चलता है। कभी बाहर का खाया कभी न खाया चलता है, कभी अमृत वेला उठा कभी ना उठा चलता है। पवित्रता में कुछ ऊंच नीच हो जाए, कहीं मन ने स्वीकार तो नहीं कर लिया। आज बाबा की निगाहों में देखकर महसूस करो कि ब्रह्मा बाप समान अगर फरिश्ता बनना है तो क्या ये सब चलता है। बेदाग निर्मल संपूर्ण पवित्र एक्यूरेट अलर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम गॉडली स्टूडेंट लाइफ, मर्यादाओं की पटरी पर ही ठीक चलती है। मेरी कौन सी कमजोरी है जो विघन रूप बनती है और मैंने मर्यादा क्रॉस करना अपने को अलाउ कर दिया है, उस कमजोरियों का नाम लिखेंगे। ध्यान रहे अपने को ब्रह्मा बाप समान संपूर्णता की सर्वोच्च चोटी पर खड़ा करके देखना, कौन सी कमजोरी विघन रूप है। उन कमजोरियों का नाम लिखते लिखते साथ साथ संकल्प करते जाएंगे, बस अब ये समाप्त हुई की हुई। बहुत धीरे धीरे चल के देख लिया, धीरे धीरे करके देख लिया, अब धीरे धीरे का सब्जेक्ट नहीं, अब तो तुरंत दान महापुण्य झटको होना है, झटके से महान परिवर्तन का बलिदान का संकल्प। इसी के साथ अगला लिखेंगे, इनमें से कौन सी कमजोरियां मैंने अभी तुरंत शिव पर बलि चढ़ा देनी है। शिव भगवान पर बलि चढ़ने का रिवाज है, भक्त सिर कटाते आए शिव के नाम पर, हम कौन सा बलिदान करेंगे जिनके लिए वो स्वयं आए हैं। उसको शरीर का सिर नहीं चाहिए, अभिमान का सिर जो अनेकों बुराइयां पैदा करता है, वही चढ़ा देना है। उसके लिए अपना महान संकल्प लिखेंगे। एक प्रश्न और लिखेंगे। अगर इन बुराइयों का दान पूरा कर दिया, अगर संपूर्ण रीति से मर्यादाओं पर 100% चलने लगे, तो कईयों के मन में कुछ कुछ द्वंद्व होता है। अमृत वेला रोज करने से कहीं हेल्थ तो नहीं खराब हो जाएगी? देरी से सोते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, सिर दर्द होने लगता है, किसी को लगता है, परिवार के बाकी लोग परेशान होते हैं, अन्न शुद्धि से कहीं परिवारों में विरोधाभास पैदा होता है, कहीं पवित्रता पर वाद विवाद विरोध की परिस्थिति आती है, कहीं रेगुलर क्लास करने पर। परंतु ये सब ईश्वरीय डायरेक्शन है। भगवान हमें जो भी आदेश देता है केवल वही कहता है जो किया जा सकता है, और वही कहता है जिसके करने में केवल कल्याण ही कल्याण है। कभी वो कल्याण प्रत्यक्ष होता है, कभी पर्दे के पीछे होता है। केवल एक अटूट अखंड निश्चय बुद्धि की आंख चाहिए जो पर्दे के पीछे छिपे कल्याण को देख सके। अमृत वेला में आने वाले विघ्नों के पीछे वाला कल्याण, परिवारों में आज मर्यादा पालन करने पर उठने वाला विरोध, उसके पीछे वाला कल्याण, उसको देखने के लिए तीसरी आंख बहुत अच्छी चाहिए। तो इन कमजोरियों के दान को लेकर, या कहीं परिवारों में लौकिक जीवन में उत्पन्न समस्याओं को लेकर जो भी मन में बोझ आता है, कईयों के मन में आता है, हमको मालूम है, उन सब बोझों को बाबा लेने को तैयार है। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर हम समर्पित हो जाएं, समर्पण केवल वही नहीं होता जो घर छोड़ बाबा के घर में आकर रह जाना, वो एक कदम है समर्पण का, वास्तविक समर्पण है अपने संशय बुद्धि का समर्पण, व्यर्थ संकल्पों का समर्पण और जिम्मेवारियों के बोझ का समर्पण, समस्याओं से उत्पन्न चिंताओं का समर्पण। ये समर्पण करने में बहुत बार बहुत जोर लगता है, बहुत सी चिंताएं ऐसी हैं जिनका कोई जवाब नहीं किसी के पास, कल क्या होगा, ऐसा ना हुआ वैसा हो गया तो, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, मेरी युगल ऐसी क्यों, मेरे मम्मी डैडी ऐसे क्यों वैसे क्यों नहीं। इन सब का एक ही जवाब है, ड्रामा कल्याणकारी है, हिसाब किताब चुकतू होने हैं। चुकतू होना भी कल्याण ही होता है, केवल सहन शक्ति बढ़ानी है, केवल ड्रामा पर अटल अडोल होकर के टिक जाना है। बाबा बैठा है, जो होगा अच्छा होगा, इस अटूट निश्चय को गहरा करते जाना है। अकल्याण में भी कल्याण देखने वाली आंख खुली रखनी है। आज गाली देता है, कल गिन गिन कर फूल चढ़ाएगा। आज समस्या है, सहन करना है, सहन करने वाले ही शहनशाह बनते। आज धन का अभाव है, त्याग और वैराग वाले कल को हीरे मोतियों से खेलेंगे, सोने के महलों में रहेंगे। इस अभाव को अभाव न माने, ज्यादा चिंताएं और समस्याएं देह भान से उत्पन्न होती है। अंदर चक्की चलाएं ठीक से और चेक कर लें। इतना ज्ञान ले लेने के बाद भी, इतने वर्षों से योग लगाने के बाद भी, अभी तक भी सिर पर चिंताओं के टोकरे रखे हुए हैं, बहुत से बोझ हम उठा करके घूम रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का नशा उतना नहीं चढ़ा है जितना चिंताओं के बोझ ने दबा रखा है। क्यों ये चिंताएं, जबकि भगवान हमें साथ देने का वचन दे चुका है और हम लगभग सारे वो बैठे हैं जिन्होंने भगवान के साथ के अनेकों चमत्कारिक अनुभव भी किए होंगे। सबके पास कोई ना कोई ऐसा अनुभव होगा जिससे वो कह सके कि बाबा मुझे साथ देता है, बाबा मेरे काम करता है, बाबा मदद करता है, बाबा मुझे प्यार करता है। जिस जिसको ये अनुभव है वो हाथ खड़ा करो। देखो अबाउट सारे हैं, अबाउट सारे, परंतु क्या होता है, इन अनुभवों को भी हम बहुत बार भूल जाते हैं कि भगवान हमारा साथी है, वो अपना वायदा नहीं भूलता। हम अपनी चिंता उस पर डालकर ये भूल जाते हैं कि मैंने चिंता उसको दी थी, फिर खुद पे ले लेते हैं। बाबा कहते हैं दी हुई चीज वापस नहीं लेनी चाहिए ना। तो आज एक बार फिर से जो कमियां कमजोरियां त्यागने के कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उसकी चिंता, बाकी अनेक प्रकार की, कुछ सेल्फ क्रिएटेड, कुछ रियल समस्याओं की चिंताएं कुछ तो मोह लोभ से पैदा होती हैं, इच्छाएं कामनाएं बहुत हैं, उनसे पैदा हुई समस्याओं से चिंता पैदा होती है। तो कौन कौन सी बातें है जो यहां एंगेज करती है, बार बार भारी करती है, उड़ने नहीं देती है? एक बार रिव्यू कर लो, कौन कौन सी बात का बोझ है, चाहे संबंध का, चाहे धन का, चाहे स्वास्थ्य का, चाहे भविष्य में आने वाले महाविनाश का। किसी ने कभी मेरे साथ गलत किया था सालों पहले, उसकी क्यों क्यों की कहानी। मैंने किसी के साथ कभी सालों पहले बहुत अच्छा किया था, आज उसे मेरे साथ अच्छा करना चाहिए था, उसने नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस, अनसुलझी पहेलियां मकड़ी के जाले की तरह दिमाग को उलझा रही हैं। आज जरा उस जाले को साफ करना है। इस सारी कहानी को रिव्यू करते हुए ध्यान रहे, इन कहानियों में घूमने नहीं जाना, डूबना नहीं। किसी पराये की दास्तान की तरह चेक कर लो, कौन सी बातें मुझे अब तक भी बोझिल करती हैं, आज उन सब बातों का बोझ मैंने बाबा को सौंप देना है। किसी ने बुरा किया, बाबा आप जानो आपका काम, जाने मेरे तो दो पाप कट गए, कल क्या होगा अच्छा होगा, शरीर में ये गड़बड़ हो गई बाबा चलाएगा, कहीं हो न जाए बाबा संभालेगा, बच्चों का क्या होगा, हिसाब किताब चुक तू कर बाबा साथ ले जाएगा। ध्यान रहे समय पूरा होता है, नाटक अंतिम चरण में है, कहीं अज्ञानवश आने वाली पीढ़ियों के 20, 40, 50 साल की चिंताएं तो नहीं उठा के बैठे। मेरे पोते का वहां एडमिशन ना हुआ तो ऐसी कहानियां तो नहीं घोट के बैठे। अगर वो चलती हैं तो कह दो अपने आप को, नाटक पूरा हुआ, बस बस घर चलना है। और अभी हम विधिवत आज अपने बोझ बाबा को अर्पित करेंगे। सब तैयार हैं बाबा को अपने बोझ देने के लिए, या अपने पास रखना ही ठीक लग रहा है? जो तैयार है वो एक बार खड़े हो जाए। जो भी हाथ में डायरी कॉपी वगैरह कुछ भी है नीचे रख दें, हाथों को फ्री कर दें और हाथ नीचे करें। चलेंगे फिर से एक अंतर जगत की यात्रा की ओर। याद दिला दें अपने को, मैं अमर आत्मा हूं, सृष्टि चक्र के अंत में इस ब्राह्मण शरीर में प्रवेश हूं, बस जल्दी संपूर्ण होकर घर वापस जाना है मुझे, इसलिए ये अंतिम सफाई करनी है, क्लींजिंग करनी है। आत्मा पर चढ़ा कोई भी बोझ उतार देना है, क्योंकि हल्के होकर उड़कर जाना है अपने वतन। तो मन बुद्धि की आंख से ले चलेंगे अपने आप को एक खुले मैदान में, हरा भरा खुला मैदान, दूर दूर तक कोई नहीं, आप अकेले खड़े हैं, शाम का समय है, सामने नीला आसमान दिखाई देता है और आप कुछ नया करना चाहते हैं, हल्के होकर तेज उड़ान भरना चाहते हैं। आपके मन में एक उमंग है, अचानक आपने देखा नीले आसमान पर सामने बड़ा सा बाबा चमका, लाइट का फरिश्ता जमीन से आसमान जितना बड़ा, मस्तक में महाज्योति शिव बाबा मेरे सामने आ गए और प्यार से बाबा ने बाहें बढ़ा दी और कह रहे हैं, लाओ बच्चे अपने बोझ मुझे दे दो और उड़ो। बाबा से मैंने नजरें मिलाई, अंतर में खुशी की लहर दौड़ गई। जी बाबा, मेरे बोझ आप उठाएंगे, वाह लीजिए बाबा। ये कहकर आपने मैदान में एक चादर बिछा दी और अपने दिमाग से सड़ी गली, बोझ पैदा करने वाली व्यर्थ की बातों को कूड़े कचरे के रूप में निकाल निकाल कर चादर पर रखने लगे। दिमाग से बेकार की कचरे जैसी बातों को निकाल निकाल कर चादर पर रख रहे हैं, कूड़ा कचरा है सब। हेल्थ का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पड़ोसी ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, कहीं ऐसा ना हो जाए, सब फालतू की बातें आपने निकाल कर चादर पर रख दी। चादर भर गई, आपने गांठ लगाई, गठरी बन गई और गठरी उठाकर आपने सिर पर रखी। सामने बाबा खड़े हैं, गठरी ले लेना चाहते हैं, दोनों हाथ सिर की ओर लेकर जाएं जैसे गठरी पकड़ी हो और सामने बाबा ने बाहें बढ़ाई हुई हैं। गठरी उठाकर धीरे धीरे बाबा के हाथों में पकड़ा दो और बाबा के दोनों हाथ पकड़ लो। बाबा के हाथों से करंट आ रहा है, आपके हाथों में जा रहा है। पांच बार सिर की ओर हाथ ले जाके गठरी ठीक से बाबा को सौंप देंगे।
जीवन
ध्यान से देखो, कटरी बाबा के हाथ में गई। बाबा की आंखों से तेज किरणें निकली शक्तियों की, और आपकी कटरी जल गई। बाबा ने आपके दोनों हाथ पकड़कर बहुत करंट भरा और कहने लगे, ध्यान से सुनो, साथ में गाओ, गाएंगे सभी। बाबा ने अपना वरदानी हाथ आपके सिर पर रखा, शक्ति भरते हुए कह रहे हैं, बच्चे जो हुआ, कोई पाप कट गए, जो होगा उसकी सहन शक्ति बाबा देंगे। हर बात में कल्याण है, ध्यान से सुनो, बाबा कुछ कह रहे हैं। आजाद पंछी, कोई बंधन नहीं, ना चिंताओं का, ना विकारों का। छोड़ दो ये देहभान के पिंजड़े, तोड़ दो इच्छाओं के बंधन, ये छोड़ दो पुरानी बातें, भविष्य की बातें। भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस बात की परवाह है। जिसके काम भगवान करे उसे और चाहिए क्या। ध्यान से सुन लो अंदर के कान से, भगवान स्वयं कह रहा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, तुम्हारे सब काम मैं करता हूँ, तुम सिर्फ मुझे सौंप कर तो देखो, बस हल्के हो जाओ, निकल जाओ मिट्टी की देह से, सफेद प्रकाश का पंछी बन उड़ चलो नीले गगन की ओर। उड़ता पंछी सफेद प्रकाश के शरीर में बिंदु पहुंच गया, नीले आसमान से पार सफेद बादलों पर बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं। बड़े प्यार से बाबा ने गले लगाया, छोटा बच्चा अपने बाप की गोदी में निश्चिंत हूँ, खुश हूँ, कोई परवाह नहीं, मैं हूँ बेफिकर बादशाह, बाप के संग खुशियों का झूला झूलने वाला, पाना था सो पा लिया, अब और चाहिए क्या। बाबा का हाथ पकड़ लो, हाथ में हाथ देकर कह दो, बस बाबा जहाँ चलेंगे संग चलेंगे, क्योंकि तुम मेरे साथ तो सब काम आप करेंगे, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बस आपकी गोदी में चढ़कर खेलना जानता हूँ। आप अपने प्यार से मुझे चलाते रहते हैं। शरीर को एक बार बिठा दें और अपने को लाइट के शरीर में, सूक्ष्म वतन में, बाबा की गोदी में किलकारियां मारता बच्चा देखें। शरीर को बिठा दें, लाइट के शरीर वाला बच्चा कभी बाप की गोदी में, कभी बाप के कंधों पर, कभी अंगुली पकड़ निश्चिंत होकर बादलों पर चलता हुआ, मैं मासूम बच्चा खुशियों के खजाने का मालिक, बाबा की प्यार भरी किरणें मुझ पर बरस जा रही हैं, मेरे अंदर खुशियों के बाजे बज रहे हैं, मेरा रोम रोम खुशी से आनंद से भरता जा रहा है। बाबा की प्यार भरी किरणों को समाते रहें, खुशी और आनंद का झूला महसूस करें। महसूस करते रहें, बाबा का हाथ मेरे हाथ में, बाबा की किरणों का स्पर्श मेरे माथे पर, मेरे गालों में और अंतर में आवाज बाबा की, बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देख रहा हूँ बच्चे। इसी स्थिति में खड़े होंगे, दाएं बाएं किसी को नहीं देखेंगे, बीच वाले अभी खड़े रहेंगे, गेट्स के नजदीक वाले पहले चलना शुरू होंगे, बाद वाले बाद में, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। चार से पांच सभी बाबा रूम में बाबा को शुक्रिया भरा बाप रूप में पत्र लिखेंगे। किसी का आधार कार्ड मिला है, गुम हुआ हो जिसका, लेकर जाएंगे। एकदम कंप्लीट साइलेंस में बाबा का हाथ हाथ में, फेस पर माथे पर बाबा की किरणों का स्पर्श और अंदर कान में बाबा की आवाज, बच्चे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, तुम किसी और को नहीं देखो। ध्यान से साथ चलते बाबा को देखो, किसी और को देखने में बाबा चला न जाए। ध्यान देंगे निकलते समय, कोई भी अपने से आगे वालों को टच नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे फरिश्ते जा रहे हों, पांव जमीन पर नहीं बादलों पर है, नजर और किसी पर नहीं बाबा पर है, हाथों को बाबा छू रहा है और कोई नहीं, माथे पर किरणें टच कर रही हैं, जैसे फरिश्ते फ्लोट कर रहे हों। बाबा को देखते रहें।